नवेद साहब, एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ दाइश के जत्थों ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, और पिछले 3 रोज़ के दौरान इराक़ के मुख्तलिफ़ सूबों, ख़ास तौर से 3 बड़े सूबों के अंदर, जहाँ हमेशा दाइशी सरगर्म रहे हैं इससे पहले तक, वहाँ से उन्होंने जो है वो अलहशदुल शाबी को ख़ास तौर से टारगेट किया है। क्या कहेंगे, क्या मकासद हैं इसके पस पर्दा? अलहशदुल शाबी को टारगेट करने का क्या मकसद हो सकता है फ़ौरी तौर पर?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजमूई तौर पर इराक़ की या शाम की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने से कबल हमें कुछ एक पस मंज़र पर थोड़ी सी हल्की सी जो है वो निगाह डालनी पड़ेगी, और ज़रूरी है कि उन अवामिल को भी गौर से देखा जाए कि जो कि इस इलाके में गुज़िश्ता 3-4 महीने में रूनुमा हुए हैं।
सही,
और हमने देखा कि इस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका को बहुत हज़ीमत उठानी पड़ी है, और बहुत ज़्यादा उसकी सियासत या पॉलिसी जो है उसकी बुरे तरीके से नाकाम हुई है। आपने देखा कि इराक़ में जब दाइश ने हमला किया था और इसके एक बहुत बड़े इलाके पर दाइश ने कब्ज़ा किया और दावा किया और एक नाम नहाद हुकूमत की बुनियाद रखने का ऐलान किया, तो इराक़ के मरजे तकलीद आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने अपने एक फतवे के ज़रिए से पूरी मिल्लत इराक़ को जो है वो यकजा किया,
सही,
और इसके अंदर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत यानी कि शिया, सुन्नी, कुर्द, ईसाई और जितने भी अकवाम वहाँ आबाद थी इराक़ के अंदर, वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और उन्होंने एक गैरत मिल्ली को मस्तन मलहूज रखते हुए जो है वो दाइश का खात्मा अपनी सरजमीन से जो है वो किया, और ये उस वक्त एक बहुत अजीम कामयाबी थी इराक़ के रज़ाकार फोर्स की कि जिन्होंने इराक़ के अंदर ये अजीम कारनामा जो है वो अंजाम दिया। साथ ही साथ अगर हम निगाह डालें सरदारे महाज इस्तकामत जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की शहादत के बाद इराकी अवाम में जिस तरीके से अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नफ़रत जो है वो पैदा हुई, और इस नफ़रत ने एक आलमी जो है वो हैसियत इख्तियार की, और इन दोनों बुजुर्गवारान की शहादत के बाद एक लहर जो पूरी दुनिया के अंदर नफरत अमेरिका के तई बे उठी, उसने यकीनी तौर पर जो है वो तमाम तखमीने जो है वो अमेरिका के तहस नहस कर दिए। अब
सही,
ज़ाहरी तौर पर हमें जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमेरिका अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए इराक़ के अंदर जो है वो चाहता है कि कोई ऐसा मसलन बदअमनी का माहौल पैदा कर दिया जाए कि जिससे ये एहसास कुछ क़वतों को हो कि अमेरिका के बग़ैर इस खित्ते के अंदर जो है वो अमन
कायम नहीं हो सकता।
कायम नहीं हो सकता, जबकि इराक़ में जो सरगर्म अमल और मसलन मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड लेवल पर, जो क़वतें जो मुल्क की सतह पर अपने मुल्क के दिफा के लिए सरगर्म अमल हैं, उन्होंने वाज़े ये पैगाम जो है वो साम्राज्य ताकतों को ख़ास तौर पर अमेरिका को दिया है कि आप हैं कि जिसकी वजह से यहाँ नाअमनी है, अगर आप यहाँ से निकल जाएं तो हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी को बरकरार रखने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। लिहाजा ये जब पूरे सिनारियों पर हम निगाह डालें तो हमें नज़र यही आता है कि अमेरिका अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए और खित्ते के अंदर एक जो उसकी एक हमेशगी पॉलिसी है कि अमन को बरकरार ना होने दे और किसी भी तरीके से जो है वो अपने वजूद को वहाँ के अवाम कहिए, राय आम्मा कहिए, ये साबित करने के लिए कि हम आपके लिए जो है वो मौजूद इलाके की रजत पसंद हुकूमतें हैं, उनका भी जो है वो किरदार है कि जो अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने वाबस्ता कर लिया है कि उनका सांस लेना बगैर अमेरिका के भी जो है वो दुश्वार
सही
नज़र आता है। लिहाजा और ख़ास तौर पर अगर वक्त है तो
जी
मैं इस अपनी
जी
गुफ्तगू को एक और
जी
अंदाज़ में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो कोरोना वायरस जो
फोकस
है
किया हुआ उसको।
उसने फोकस किया हुआ है। हर जगह जो है वो हम देख रहे हैं कि इस मनहूस वायरस ने जो तबाही मचा रखी है और इसके लिए जो इसके सद्देबाब के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, और ख़ुद अमेरिका में जो इस वक्त सूरत हाल है और अमेरिका के अवाम जो है वो इस वक्त नहायत कर्ब के आलम में है। इतना कर्ब शायद तारीख ने कभी नहीं देखा जितना इस वक्त अमेरिका में जो है वो देखा जा रहा है। लिहाजा ये अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कहिए या इसका एक तर्ज अमल होता है कि वो बैनुल अक्वामी तौर पर जो ख़बरें होती हैं उन उस दरमियान कोशिश करता है कि राय आम्मा को मुनहरिफ करे और खामोशी से अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश करे।
सही
लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इराक़ के अवाम बीदार हैं, इराक़ के हुक्मरान जो हैं वो बेदार हैं और ख़ास तौर पर उनकी पार्लियामेंट जो है वो दिक्कत के साथ तमाम चीज़ों को जो
सही
है वो देख रही है, लिहाजा
सही
फोकस किए हुए है, लिहाजा अमेरिका अपनी किसी भी साजिश में कामयाब नहीं हो सकता।
बहुत शुक्रिया। इस वक्त चलते हैं हम मुजम्मिल हातमी साहब की तरफ, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदेद।
वालेकुम सलाम,
मुजम्मिल
कैसे हैं
साहब,
आप?
इराक़ की सूरत हाल के हवाले से जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि इराक़ इस वक्त एक टर्माइल या अबूरी दौर से गुज़र रहा है, और जब भी हम ये देखते हैं कि इराक़ में हुकूमत साजी के लिए एक संजीदा कोशिशें होने लगती हैं तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या वहाँ पर पेश आता है कि जिससे तमाम तर जो सियासी मामलात और इस्तेहकाम की कोशिशें हैं वो नाबूद हो जाएं। आपके ख्याल में दाइश ने जो इस वक्त सर उठाया है, इसके पसे पर्दा भी क्या यही मकासद कार फरमा है कि इराक में अम कायम ना होने दिया जाए?
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बिल्कुल यही बात है। इसके पहले हमें दाइश से मुतल्लिक गुफ्तगू करूं, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आवाम को बताना चाहता हूं।
जी
3 साल कबल मोसुल में जब दाइश को जिल्लत और शिकस्त का सामना करना पड़ा हशदुशाबी और अवामी मजाहमतकारों के हाथों के नतीजे में, तो उसके बाद दाइश ने अपने जो दहशतगर्द थे वो सऊदी अरब के बॉर्डर क्रॉस करके यमन में चले गए थे, और तकरीबन हफ्ता कबल अंसारुल्ला मुजाहिदीन ने जो दाइश के कैंप पर जो कब्जा किया, कंट्रोल हासिल करने के बाद वहां पर सऊदी खेमे सऊदी हथियार बरामद हुए। अब
सही
चूंकि अमेरिका चूंकि अबू कासिम सुलेमानी के शहादत के बाद, अबुल महदी अल मुहंदस की शहादत के बाद उनको सूबे अंबार के अंदर ऐन अल असद जो फौजी अड्डा था अमेरिका पे, अमरीकी अड्डे पर ईरानियों ने हमला किया, ईरानी मिजाइलों ने हमला किया, उनको तारीख में 72 सालों बाद एक वाजह चमाट का सामना करना पड़ा आलमी साम्राज्य को। उसके बाद उन्होंने एक अड्डा अभी खाली किया अवामी इराकी अवाम और पार्लियामेंट के वोटों के नतीजे में। अब वो चाह रहे हैं कि अपनी क्या कहते हैं इस नजिस जिस्म को यहाँ पर इराक के अंदर किसी न किसी सूरत में कायम रखें। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर
जी
कि इराक और शाम के दरमियान 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है, एक अलकायम है और एक अलतनफ है। अलकायम चूंकि इराक और शामी फौज के हाथों में है, वहां पर आए रोज इसराइली और अमरीकी फिजाई बम्बारी होती है, जबकि अलतनफ अमरीकी फौजी अड्डे के कंट्रोल में है बॉर्डर क्रॉसिंग। और दाइश के जो दहशतगर्द हैं वो शाम की बॉर्डर क्रॉस करके अलतनफ के रास्ते इराक के अंदर
जी
आकर नाइट विजन गूगल्स जो अमेरिकन वेब आर्मी यूज करती है, नाइट विजन गूगल्स, थर्मल कैमरा और क्या कहते हैं जदीद किस्म के एंटी टैंक जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं उनके जरिए उन हथियारों से लैस होकर वो हशदुशाबी के कानवाई के ऊपर उनके ठिकानों पर जो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं उन पर हमला करते हैं। और ये उनकी आखिरी शिकस्त की एक अलामत है कि बस एक मुर्दा जो आखिरी बार फड़कता है वो यही कर रहे हैं दाइश वाले, और इनकी इससे ज्यादा और कोई हैसियत नहीं है। हमने गुज़श्ता 4-5 साल को दाइश के जो उरूज और जवाल को हमने वोच किया, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा तकलीफ अमरीका और सऊदी अरब को हुई थी, आप वाकिफकार होंगे 2013 में जब इसराइल दाइश ने सर उठाया था तो अमरीकी अड्डे मौजूद थे इराक के अंदर। 2014-2016 में जब दाइश ने सर उठाया था तो उस वक्त अमरीकी
जी
अमरीकी अड्डे इराक के अंदर मौजूद थे, लेकिन अमरीका ने मदद नहीं किया। इराक ने $1 मिलियन पैसे इराकी अमरीकी हुकूमत को दिए हुए थे F-16 के नतीजे में, F-16 लेने के लिए Block 52 जदीद किस्म के
जी
हथियार, अब्राम टैंक और F-16, लेकिन अमरीका ने हथियार नहीं दिए। 3 महीने लग गए अमरीका को दाइश के खिलाफ पेशकदमी करने के लिए, सोचने के लिए 3 महीने लग गए, हालांकि अमरीकी अड्डे ऐन अल असद में, अलम्बार सूबे में, बगदाद में, ग्रीन जोन में मौजूद थे, लेकिन वो वाहिद ईरान था पड़ोसी मुल्क जिसने बरादर इस्लामी मुल्क इराक के हुक्म पर उनके इल्तिजा पर अपनी फौज भेजी, हथियार भेजे। कासिम सुलमानी शहीद ने 24 घंटे लगे ईरान को अपनी फौज इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इराक के अंदर आके वहां के इराक को आज बचाने में जो ईरान का किरदार है वो नाकाबिले फरामोश है, लेकिन अमेरिका ने
जी
क्या किया आज तक इनकी यही तारीख है।
बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आप लाइन पर रहिएगा। नवे साहब, जैसा कि इन्होंने भी इशारा किया कि सन 2014 में जब इराक़ में दाइश ने सर उठाया था, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ मौजूद थी लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की। खुद अमरीकी हुकाम तो इस बात का बाद में इतराफ़ कर चुके हैं, दाइश और इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने अपने मकासद के उसूल के लिए बहरहाल इराक में बनाया। एक और जो सिनारियो है वो ये है कि सन 2014 में भी शाम की बॉर्डर क्रॉस करके ही दाइश ने इराक पर हमला किया था, और अब फिर ये इत्तलात आ रही हैं कि इराक शाम की बॉर्डर क्रॉस कराकर शाम में अमरीकी फोर्सेस जो हैं वो दाइश को मुंतकिल कर रही हैं। क्या आप समझते हैं कि 2014 का सिनारियो फिर इराक में दोहराया जाएगा?
उस तरीके का तो नहीं, क्योंकि बहरहाल इस वक्त ईरान की जो फौजी मुशावरत के ज़रिए से
जी
जो कामयाबी इराकी आवाम को हासिल हुई है, उसने अपने जो है वो अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है उस इस्तकामत ने, और जिसकी वजह से अब ऐसा लगता नहीं कि वो अपने मकासद में काम। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि शाम से, यानी कि शहर जो है अशदादी जो हस्का के मुजाफात में वाक़ है, ये पहली मर्तबा नहीं है कि यहाँ से दहशतगर्द जो है वो इराक़ मुंतकिल किए जा रहे हैं,
क्योंकि ये
जबकि
इलाका अभी तक जो है वो शाम का दहशतगर्दों के कंट्रोल में
कंट्रोल
है।
में। जी हाँ, बल्कि हमने देखा कि 2019 में भी जो है वो यहाँ से दहशतगर्द मुंतकिल किए गए थे, और जब भी ये मुंतकली होती है तो हम देखते हैं और बैन अलाक्वामी आज़ाद ज़राए इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि गासिब सेहोनी हुकूमत जो है वो भी इस ऑपरेशन में भरपूर तरीके से शिरकत करता है, ताकि ये जो है वो मुंतकली नहायत इत्मीनान के साथ अंजाम पा जाए। मैं यहाँ पर एक और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त इराक़ हो या शाम हो,
जी
आप ये देखें कि अमेरिका जो है उसकी नज़रें यहाँ के जो कुदरती वसाइल हैं उनकी तरफ हैं।
सही,
आप शाम में इस वक्त जो अक़वामे मुत्तहिदा में शाम के नुमाइंदे हैं
बशार जाफरी साहब
बशार जाफरी
जी।
साहब, उन्होंने भी खुलकर इस चीज़ का इजहार किया है कि अमेरिका जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उस पर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाह रहा है, और ये हल्की फुल्की सी जो एक जाबजाई दहशतगर्दों की होती है या एक मूव होती है या ये कि दहशतगर्दाना हमले होते हैं, उनका मकसद व हदफ ये होता है कि
सही
वो अपने उन अहदाफ को हासिल करने के लिए जो है वो ज़्यादा तकउद्दौ करें।
सही
लिहाजा ये अब पूरा तरीके समझ में राय आम्मा को आ चुका है, लेकिन ये कुछ भी कर लें, इराक़ के अंदर ख़ास तौर पर जिस तरीके से ये तकरीबन 2011 से आप देखें कि कितना सरतोड़ कोशिश शाम में हो रही है, लेकिन शाम के जो इक्तदार आला है
वो महफूज
वो
है।
महफूज है और उन्होंने भरपूर तरीके से जो है मुज़ाहमत की, लिहाजा ये मुज़ाहमत है कि जो अमेरिका को झुंझलाहट में मुब्तला कर रही है, और किसी सूरत में इराक़ में अमेरिका और दाइश जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वो,
जी
चूंकि इस वक्त हुकूमत साजी का जैसा कि आपने इशारा किया ये हुआ है, तो मुमकिन नहीं है कि वो किसी तरीके से कामयाब हो पाएँ।
बहुत शुक्रिया नवेद हैदर तकवी साहब आपका इस गुफ्तगू के लिए। कराची से मुजम्मिल हातमी साहब आपने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं।